ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। जाने माने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए मिथुन चक्रवर्ती को यह सम्मान देने का फैसला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नौकरियों की तेजी से बदलती प्रकृति तथा गेमिंग, एनिमेशन और फिल्म निर्माण जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों पर बल दिया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रचनात्मक प्रतिभाओं में अपार क्षमता है। उन्होंने लोगों से सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित क्रिएट इन इंडिया थीम के तहत 25 चुनौतियों में भाग लेने का आह्वान किया। वेबसाइट wavesindia.org पर इन चुनौतियों में भाग लिया जा सकता है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस वर्ष 22 अगस्त को नई दिल्ली में पहले क्रिएट इन इंडिया चैलेंज की शुरुआत की थी। ये चुनौतियां आगामी विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स के लिए अग्रदूत के रूप में काम करेंगी। ये भारत में डिजाइन विश्व के लिए डिजाइन के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप होंगी। भारत के मीडिया और मनोरंजन उद्योग को आगे बढ़ाने और क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 5 से 9 फरवरी तक विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुचारू मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस चरण में कल 7 जिलों की 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें से 16 सीटें कश्मीर संभाग में और 24 जम्मू संभाग में हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार कल शाम संपन्न हो गया। इस चरण में 415 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। इधर हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटों के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं। राज्य में एक ही चरण में 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। राज्य में मतगणना जम्मू कश्मीर के साथ 8 अक्टूबर को होगी। बिहार में कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और कमल बलान सहित उफनती नदियां कई स्थानों पर बाढ़ का कहर बरपा रही हैं। कोसी और गंडक नदियों पर बने बांध से पानी छोड़े जाने के बाद सुपौल, सहरसा, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज के कई निचले इलाके बाढ़ से प्रभावित हैं। 16 जिलों के 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। कोसी क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा के पास बाढ़ के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। केंद्र सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए बिहार सरकार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कल पटना में बिहार में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। श्री राय ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ की 11 टीमों को राज्य के विभिन्न हिस्सों में तैनात किया गया है। जमैका के प्रधानमंत्री डॉ एंड्रयू होलनेस आज से 3 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंच गए हैं। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। ये जमैका के किसी भी प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा है। श्री होलनेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भेंट करेंगे। श्री होलनेस अन्य गणमान्य व्यक्तियों और व्यापार तथा उद्योग जगत के नेताओं के साथ बातचीत भी करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की आशा है। मध्य पूर्व संघर्ष में नया मोर्चा खोलते हुए इसराइल ने यमन में हूती ठिकानों पर हवाई हमले शुरू किए हैं। इसराइल की सेना ने कहा है कि ये हमले पिछले 2 दिन में इसराइल पर ईरान से जुड़े हूती आतंकियों के मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए। इसराइल ने अपने नागरिकों को किसी भी तरह के खतरे से निपटने का अभियान जारी रखने के दृढ़ संकल्प पर जोर दिया। इस घटनाक्रम ने विशेष रूप से गाजा और लेबनान पर बढ़ते इसराइली हमलों के आलोक में क्षेत्रीय संघर्ष के व्यापक रूप लेने की आशंका बढ़ा दी है। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच का आज 4था दिन है। सब ताजा समाचार मिलने तक बांग्लादेश ने 4 विकेट पर 124 रन बना लिए थे। 2 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। पहले मैच में भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से हराया था। 14वीं जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप आज से रांची में शुरू हो रही है। इसमें 26 टीमें खेलेंगी। टूर्नामेंट में कुल 8 पूल बनाए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।